एचआईवी सिर्फ 3 वजहों से फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध रखने से, इस्तेमाल के।
अरे सोनू बेटा चैनल बदल दो।
क्यों पापा, अभी फिल्म शुरू हो जाएगी पापा, मैं नहीं बदलूंगा।
सोनू पापा ने कहा ना चैनल बदल दो।
नहीं मम्मी मैं नहीं बदलूंगा, अभी फिल्म आएंगी मैं देखूंगा।
नमस्कार मिस्टर शर्मा जी, कैसे हैं आप
जी? आप लोग
शर्मा जी, ये है जगत चंदौली और मैं हूँ प्रेमा नेगी।
ओहो, तो कहीं आप वो नई दिशा वाले तो नहीं?
जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने।
अच्छा अच्छा, आइए। अरे आइए ना, बैठिए बैठिए। आप खड़े क्यों हैं? अरे सुनीता
जी, कहिए।
अरे कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करो भाई।
जी अभी लाई।
वैसे तो मैं आपका कार्यक्रम नई दिशा सुनता हूँ, वो एचआईवी के। एक मिनट। सोनू बेटा।
हाँ पापा।
सोनू बेटा तुम जरा बाहर जाकर खेलो।
अरे शर्मा जी, उसे बैठे रहने दीजिए।
अरे नहीं नहीं, वो दरअसल आपके प्रोग्राम का विषय ही तो।
विषय? विषय एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना ही तो है।
और अगर घरों में रहने वाले बच्चे अपने माता पिता से परिवार के सदस्य को एचआईवी पर खुलकर बात करते हुए नहीं देखेंगे तो वो इसके बारे में जागरूक कैसे होंगे? और मुझे लगता है आप टीवी पर एचआईवी के संबंध में आने वाले विज्ञापनों को भी अपने बच्चे को नहीं देखने देते होंगे।
और यकीनन जिन किताबों या अखबारों में एचआईवी के संबंध में जानकारी होती होगी उन्हें भी आप अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखने की कोशिश करते होंगे।
देखिए प्रेमा जी, जगत जी, आप लोग जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन आप भी तो समझिए ना, हम लोग सामाजिक लोग हैं और अगर लोग बच्चे के सामने एचआईवी के विषय पर ऐसे ही खुलकर बात करेंगे, उसके विज्ञापन देखेंगे, किताबों में पढ़ेंगे, तो फिर क्या असर पड़ेगा उस पर? है बच्चा तो बिगड़ेगा ही ना, बताइए।
हाँ हाँ, और क्या। अरे शर्मा जी बिगड़ेगा क्यों, आपको नहीं लगता कि आपका बच्चा समय रहते एचआईवी के प्रति जागरूक हो जाएगा?
लेकिन बच्चों से यूँ खुलकर बात करना बहुत मुश्किल है प्रेमा जी।
उसका भी उपाय है सुनीता बहन, लेकिन पहले आप ये फैसला तो लीजिए कि हमें अपने बच्चों को एचआईवी के प्रति जागरूक बनाना है या नहीं।
हाँ हाँ, बनाना तो है, तो फिर आप ही बताइए ना प्रेमा जी, हम कैसे बात करें अपने बच्चे से?
सबसे पहले तो आप अगर किसी से भी एचआईवी के संबंध में बात कर रहे हैं और आपके सामने बच्चे बैठे हैं तो अपनी बातचीत को ऐसे रोकिए मत जैसे आप शुरुआत में बात करते हुए रुक गए थे।
और हाँ, अगर टीवी पर, किताबों में या फिर अखबार में एचआईवी के संबंध में कोई जानकारी आ रही है तो उससे अपने बच्चे को दूर मत कीजिए, उसे इसके संबंध में जानने दीजिए।
साथ ही आप एचआईवी से जीवन पर पड़ने वाले असर के संबंध में बच्चों के सामने बात कीजिए।
इसके अलावा टीवी या रेडियो पर आने वाले एचआईवी से जुड़े कार्यक्रमों के संबंध में भी आप चर्चा कर सकते हैं।
तो प्रेमा जी, जगत जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आपका कार्यक्रम तो सुना करता था लेकिन अभी तक इन सब बातों से अनजान था।
हमें खुशी है शर्मा जी कि आपको हमारी बातें अच्छी लगें और आपने इसे अपने जीवन में अपनाने का निश्चय भी किया।
चलो जगत, बहुत देर हो रही है, हमें स्टूडियो भी तो पहुंचना है।
अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तो शर्मा जी अब हम चलते हैं, नमस्ते।
जी नमस्ते।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग यहाँ तक आए।
चलो जगत, आखिरकार हम अपने स्टूडियो तो पहुंच गए।
हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, स्टूडियो तो पहुंच गए, लेकिन टाइम देखा तुमने, समय हो गया भेजा फ्राई का, तो क्या करें, प्रोग्राम वहीं से शुरू कर दें।
बिल्कुल।
नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त जिसका नाम है जगत चंदौली और मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में
प्रेमा नेगी।
हम दोनों लेकर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम जिसका नाम है नई दिशा। अच्छा प्रेमा, तुम रास्ते में आते हुए कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी?
हाँ जगत, मैं कह रही थी कि चाहे कुछ भी कहो, हर कोई अपनी और परिवार की सुरक्षा चाहता है। और अगर लोगों को एचआईवी के संबंध में सही ढंग से बताया जाए तो वो समझते भी हैं।
बिल्कुल प्रेमा।
तो चलो जगत, हम अपना अगला सेगमेंट शुरू करते हुए श्रोताओं को बताते हैं कि हमारे आज के विजेता कौन है।
बिल्कुल, तो दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि अगर कोई एचआईवी से संक्रमित होता है तो आम तौर पे कितने दिनों में संक्रमण के लक्षण दिखाई देने की संभावना होती है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 5 से 7 साल। और एपिसोड 36 का सही जवाब देकर हमारे आज के विजेता बने हैं प्रदीप दत्ता आसाम से। आपको हमारी तरफ से भेजा फ्राई कैप बहुत बहुत मुबारक हो।
और अब हमारे आज के एपिसोड का सवाल।
और आज का सवाल है, एचआईवी वायरल लोड टेस्ट किस चीज को जांचता है? अपना सवाल फिर से सुनिए, एचआईवी वायरल लोड टेस्ट किस चीज को जांचता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए, एक वायरल कण का औसत वजन, बी, रक्त में वायरस की मात्रा, सी, हड्डियों में वायरस की राशि, और डी, संक्रमण की अवधि। अपने ऑप्शन फिर से सुनिए, ए, एक वायरल कण का औसत वजन, बी, रक्त में वायरस की मात्रा, सी, हड्डियों में वायरस की राशि, और डी, संक्रमण की अवधि।
दोस्तों, अगर आप आज के सवाल का जवाब देकर हमारी भेजा फ्राई कैप जीतना चाहते हैं तो फटाफट अपना मोबाइल उठाइए और टाइप कीजिए ND40 भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ए बी सी या डी, और लिखकर इसे भेज दीजिए हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 9717678223, यानी कि 9717678223।
और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट आमने सामने का। दोस्तों, आमने सामने में आज हम बात करेंगे एचआईवी एड्स के बारे में और बच्चों में इसके प्रति जागरूकता के बारे में। ये जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए और कैसे इस बारे में बच्चों से बात की जाए, आइए यही जानते हैं हमारे आज के मेहमान से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
मैं ज्योति जगताप, फैमिली हेल्थ इंटरनेशनल में टेक्निकल स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करती हूँ।
आपसे हमारा पहला सवाल है कि क्या बच्चों से एचआईवी एड्स के बारे में बात करनी चाहिए? अगर हाँ, तो किस तरह से हम उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं?
बिल्कुल, बच्चों से एचआईवी एड्स के बारे में बात करनी चाहिए, और जैसे हम आम तौर पे कोई भी बीमारी के बारे में बताते हैं ताकि उसकी रोकथाम हम कर सके, अपने लिए भी और दूसरों का भी बचाव जरूरत पड़ने पर कर सके। तो वैसे ही एचआईवी एड्स के बारे में बच्चे की उम्र के हिसाब से उसे जानकारी देनी चाहिए।
अच्छा, हमें ये बताइए कि हमारे देश में कितने किशोर और युवक एचआईवी एड्स से ग्रसित हैं?
अगर देखा जाए, बहुत नज़दीकी जो एस्टिमेट्स हैं इसके हिसाब से करीबन 0.34% जो लोग हैं देश में वो एचआईवी से ग्रसित हैं, जिसमें कि बच्चे और वयस्क दोनों ही आ जाते हैं। अगर बच्चे हम बात करें तो करीबन 94,000 तक के बच्चे हो सकते हैं इससे ग्रसित हो।
और इन नवयुवकों में एचआईवी का संक्रमण ज़्यादातर किस वजह से हो रहा है?
ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो आंकड़े अभी मैंने आपको बताए हैं, 94,000 जो बच्चे हैं और जो बाकी के हैं वो वयस्क हैं, तो इसमें 15 से 29 की उम्र में ज़्यादातर एचआईवी संक्रमण हुआ है। और ये लोग दूसरे शहरों में कामकाज की खोज में जाते हैं, उनका परिवार उनके साथ नहीं होता है, जिसके कारण के वो बहुत अकेले और खुद से हर फैसले लेते हैं, तो जिसमें वो कई बार नशीली पदार्थों का सेवन भी करते हैं। उनके पास सही जानकारी का अभाव पाया गया है, और उनको सपोर्ट करने वाला या उनको कोई दिशा दिखाए, कोई मार्गदर्शन करे, ऐसे नहीं हो पाता। इसके कारण एचआईवी होने के जो संभावना है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक खुद ही तौर पे खुद से खुद बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, जहाँ पे कि बिना किसी सुरक्षा के, या हम कहेंगे असुरक्षित यौन संबंध भी कर लेते हैं, और यही कारण है कि नवयुवकों में एचआईवी ज़्यादा फैल रहा है।
जी अच्छा, हमारा आपसे एक आखिरी सवाल है कि जिन बच्चों को एचआईवी संक्रमण अपनी माँ से हुआ है उन्हें इस बारे में कैसे समझाना चाहिए?
देखिए, एचआईवी माँ में आया है तो कोई 4 कारण है, उनमें से ही एक से आया है। हो सकता है पिता से आया हो, या हो सकता है कोई और वजह से आया हो। तो बच्चे को जब ये जानकारी दे तो उसकी उम्र ध्यान में रखते हुए उसे ये कारण बताया जाए, लेकिन जब जानकारी दे तो इस तरह से दे ताकि बच्चे और माँ के जो संबंध है उस पे कोई विपरीत परिणाम न हो और साथ ही बच्चे को HIV एड्स के बारे में जानकारी भी मिले।
जी शुक्रिया, आपने इतनी सारी जरूरी जानकारियाँ हमें और हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब हम देते हैं जवाब आपकी बात का।
दोस्तों, आपकी बात में आज हम जो चिट्ठी पढ़ने वाले हैं, इसे हमें भेजा है दिव्या ने साउथ दिल्ली से, और वो पूछ रही हैं कि शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड के HIV पॉजिटिव स्टेटस का पता चला, जिसके कारण हमारी लड़ाई हुई और हम दोनों ने अपने आप में ही एक दूसरे से संबंध तोड़ लिया। लेकिन हमारे ट्रेडिशन के अनुसार कोई भी दूसरी शादी नहीं कर सकता, इसलिए हम दोनों को ही समझौता करना पड़ा। तो क्या अब हम कंडोम को यूज करके यौन संबंध बना सकते हैं या नहीं, और हम एक बच्चा भी चाहते हैं, तो ये कहां तक पॉसिबल है? दिव्या जी, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में जहां एक पार्टनर HIV से संक्रमित है वहां कंडोम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को HIV संक्रमण होने का पूरा पूरा चांस होता है।
और दिव्या जी, जैसा आपने पूछा कि आप बच्चे को भी जन्म देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ICTC सेंटर जाकर काउंसलर से सलाह करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पार्टनर के HIV पॉजिटिव होते हुए अगर हम बच्चे के बारे में सोचते हैं तो उसमें रिस्क होता है कि होने वाला बच्चा HIV से संक्रमित हो। लेकिन गर्भावस्था के दौरान नेविरेपिन ART या ART दवाइयों के साथ इसका रिस्क कम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम आपको यही बताएंगे कि आपको रिस्क समझते हुए ही ये फैसला लेना होगा। इसके लिए आपको डॉक्टर या फिर काउंसलर से विचार विमर्श करना होगा, और अगर आप चाहें तो बच्चा एडॉप्ट भी कर सकती हैं।
तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है।
दोस्तों, अगर आपके मन में भी HIV के संबंध में कोई भी सवाल है तो आप हमें अपना सवाल खतों या फिर ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर सकें।
चिट्ठी भेजने के लिए आप हमारा पता भी नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
और हमारा ईमेल आईडी है नई दिशा NAYDISHAA@gmail.com।
जगत, अब जानकारियाँ तो हम काफी दे चुके हैं, क्यों ना थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए?
बिल्कुल प्रेमा,
तो आइए सुनते हैं जीवन की राह की 40वीं कड़ी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना कि सुमन को एहसास होता है कि उसकी माँ के साथ जो हादसा हुआ वो उसकी वजह से हुआ है। वो इसके लिए अपने पिता से माफी मांगती है।
उधर मोहित और सुरेंद्र रक्तदान करने वाले लोगों की सूची बनाते हुए जयपाल की दुकान पर जाते हैं। अचानक प्रधान भी वहाँ आ जाता है। जयपाल रक्तदान करने से मना करता है और प्रधान इस बात पर जयपाल की फिर बेइज्जती करने की कोशिश करता है। जयपाल के घर पर उसकी माँ उसके लाए गए सामान का इस्तेमाल करने से मना करती है। इस पर जयपाल की पत्नी लक्ष्मी जयपाल की माँ को समझाने की कोशिश करती है। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
सुमन बेटा, मुझे रक्तदान शिविर के लिए निकलना है, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना।
जी पिताजी, लेकिन जाने से पहले खाना खा लीजिए।
खाना? लेकिन बेटा ये खाना।
और पिताजी, वो मैंने बनाया है।
अरे वाह।
और पिताजी, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, मैं घर का और माँ का दोनों का पूरी तरह ख्याल रखूंगी।
शाबाश बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी बेटी ना सिर्फ बड़ी हो गई है बल्कि समझदार भी हो गई है।
ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाइए और जल्दी से ये गर्मा गर्म खाना खा लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा।
अच्छा अच्छा।
सुमन,
अरे शांता चाची, तुम यहाँ पर खून देने आई हो?
हाँ बेटा, मैं भी खून देने आई हूँ।
नेक्स्ट।
अरे लो जाओ जाओ चाची, देखो तुम्हारा नंबर आ गया।
अरे माता जी, आप यहाँ क्यों चली आई?
अरे लल्लू, मैं आ नहीं सकती हूँ का?
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम आपका खून नहीं ले सकते।
क्यों डॉक्टर बाबू, आप इनका खून क्यों नहीं ले सकते? इनके खून में कोई खराबी है क्या?
देखो बात खून में खराबी की नहीं है, बात है इनके उम्र की। देखो इनको देखते ही पता चलता है कि इनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी।
हाँ ललुआ, वो तो है।
तो बस यही बात है, खून केवल 18 से 60 साल के बीच की उम्र का व्यक्ति ही दान कर सकता है।
अच्छा।
हाँ, और फिर इनके शरीर की कमजोरी तो देखो।
हाँ।
वैसे भी रक्तदान करने के कुछ नियम और कायदे हैं।
नियम कायदे?
हाँ, जैसे रक्तदान करने वाले व्यक्ति का वजन कम से कम 45 किलो हो, व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो, रक्तदान के समय उसे कोई बीमारी ना हो।
आप सही कह रहे हैं डॉक्टर बाबू। और चाची की हालत? चाची तुम रहने दो।
ठीक है।
लीजिए डॉक्टर बाबू, अब मेरे बारे में बताइए, पूरी तरह से स्वस्थ भी हूँ, अब मैं तो खून दे सकती हूँ ना?
बिल्कुल।
माँ, माँ, हे भगवान, कहाँ रख दी? अरे हाँ, ये रही।
बरखुरदार, क्या हम भी जान सकते हैं कितनी जल्दी में आप जा कह रहे हैं?
कहीं नहीं पिताजी, वो गांव में रक्तदान शिविर लगा है ना, बस वहीं जा रहा हूँ।
लेकिन वहाँ तुम्हें क्या काम पड़ गया बेटा?
अरे पिताजी, रक्तदान शिविर में जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ना कि रक्तदान करने ही जा रहा हूँगा।
अरे विनोद बेटा, ये किस चक्कर में पड़ गए हो तुम? और वैसे भी हमारा खून इतना सस्ता नहीं है कि हम उसे यूं ही बांटते फिरें। तुम वहाँ नहीं जाओगे।
ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी, मैंने तो सुना था कि आपने भी रक्तदान के लिए अपना नाम लिखवाया था।
अरे बेटा, हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर होते हैं, बहुत सी बातें सिर्फ कहने के लिए होती हैं, करने के लिए नहीं।
पिताजी ये सब आप क्या कह रहे हैं?
बेटा मैं वही कह रहा हूँ जो सही है।
आप चाहे जो भी कहें पिताजी, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें या ना समझें, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा हूँ। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है।
विनोद, विनोद।
अरे अरे, आप लेट ही रहिए, डॉक्टर ने आपको बिस्तर से उठने के लिए बिल्कुल मना किया है।
नहीं सुमन, ऐसे बिस्तर पर पड़े रहने से कैसे काम चलेगा, घर का काम भी तो करना है।
उसकी चिंता आप क्यों करती हैं? मैं हूँ ना आपकी बेटी।
सुमन।
हाँ माँ। माँ मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मैं बहुत गंदी हूँ।
अरे नहीं बेटा, तू ये सब क्यों कह रही है, तू तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है।
माँ।
राजेश पोखरियाल, 122 दीपक नौटियाल। नेक्स्ट।
डॉक्टर साहब, सभी लोग रक्तदान कर चुके हैं।
लेकिन आपने तो अभी तक रक्तदान किया नहीं है।
जी मैं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं कैसे रक्तदान कर सकता हूँ?
क्यों?
वो मैं HIV पॉजिटिव हूँ डॉक्टर।
मानना पड़ेगा राजन जी, आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं।
जी डॉक्टर साहब, और मैं चाहता हूँ कि हर HIV पॉजिटिव व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझे।
डॉक्टर साहब मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई।
अपना नाम बताइए।
जी विनोद।
उम्र?
जी 20 साल।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कुछ और फल और जूस का इंतजाम कर देता हूँ।
ठीक है।
तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जीवन की राह,
और आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे इस कार्यक्रम के सबसे जांबाज सिपाहियों के पास।
जी हाँ, और वो हैं हमारे सामूहिक संवाददाता, जो न सिर्फ हमारे श्रोताओं के बीच जाकर उनसे मिलते हैं, बल्कि HIV से जुड़े विषयों पर भी उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं।
तो जैसा कि हमारा आज का मुद्दा था कि बच्चों से किस तरह HIV के बारे में खुलकर बात की जाए, लेकिन ये बात भी मायने रखती है कि कितने लोग इस बात को सही मानते हैं कि HIV पर बच्चों से खुलकर बात की जानी चाहिए।
और यही जानने का प्रयास कर रहे हैं आज हमारे सामूहिक संवाददाता, हमारे सेगमेंट क्या किया जाए में।
बातचीत तो सभी से होनी चाहिए, उसमें एज लिमिट भी मेरे हिसाब से बहुत हो सकता है। ग्रामीण स्तर पर जब प्रचार अभियान का कार्यक्रम चलेगा तो स्वाभाविक है कि जन सहभागिता के तहत इसमें बुजुर्ग हों या महिला हों या पुरुष हों या बालिका अवस्था में जो भी लोग हैं, तब इसका अभियान सुनने के बाद इस कार्यक्रम में जरूर भाग लेंगे।
HIV के बारे में तो बातें होनी ही चाहिए कि भाई ये एक संक्रामक रोग है, इससे मतलब पहले ही से जब बच्चे अपने हिसाब से रहेंगे तो बाद में परेशानी नहीं आएगी।
की जानी तो चाहिए वैसे, क्योंकि बच्चों के साथ अगर ये बात होगी तो उनको भी भविष्य में इस चीज का नॉलेज रहेगा। अपने साथ पहले तो ना हो, अगर किसी के साथ हो गया तो उसको अच्छी राय दे सकते हैं।
हाँ, HIV को लेकर बच्चों के बीच में बात करनी चाहिए, क्योंकि जानकारी उसका बचा है। अगर हम बच्चों के सामने HIV की जानकारी से लेकर कुछ बातें करेंगे तो उन्हें भी कुछ जानकारी मिलेंगी।
तो दोस्तों, ये थी हमारे श्रोताओं की राय। उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद जो लोग इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि बच्चों के साथ HIV पर बात नहीं करनी चाहिए, वो भी अपनी राय बदल देंगे।
और दोस्तों, जैसा कि अब घड़ी कर रही है इशारा, यानी कि समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे
अपने सामूहिक संवाददाताओं को जिन्होंने हमारे श्रोताओं के विचारों को जानने का प्रयास किया।
साथ ही हम धन्यवाद करते हैं सामुदायिक रेडियो हैवलवानी और मंदाकिनी की आवाज को, जो इस कार्यक्रम को पहाड़ों में बसे हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
और इसके अलावा हम आभारी हैं अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का भी, जिनके वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कम्बाइन द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। और दोस्तों, अब मुझे और प्रेमा को दीजिए इजाजत। हमारी और आपकी अगले हफ्ते इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।